लौल इस समय तुमो हो, क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी, कौन सी ऐसी गंदी बात सुनी, ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात बी अनफुसिम खैरन, तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, इसको नोट कर लें कि मोमिनों ने अपने बारे में बुरा, अब इसके दो तीन मुख्तलिफ मानी बन सकते हैं। पहली बात यह कि इस बात को सुनकर उन्होंने हज़रत आयशा के बारे में नेक गुमानी क्यों नहीं की। देखिए, दुनिया में हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से पता होता है। मिसाल देती हूँ कि आपके घर का एक बच्चा बिल्कुल कभी ऊंची आवाज़ से बोला भी नहीं, गाली देना तो दूर की बात है, और हर वक्त उसके मिजाज में नरमी का ही अंसर गालिब है। एकदम कोई आपको कहता है बाहर, कहता है इधर आए, वो देखे बाहर, वो अब्दुल्ला ने बाहर गाली दी है, तो आप भला क्या कहेंगे, अब्दुल्ला ने दी है, अल्लाह के बंदो को तो कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोला, वो गाली कैसे देगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना। इसी तरह ख़ानदान की किसी औरत की कोई बात आती है सामने, आप कहते हैं कि उसने तो, मिसाल है कि अपने शोहर को ये बात सुना दी, आप कहते हैं उसने सुनाई, वो तो अल्लाह की गाय बन के उसके आगे बोलती भी नहीं है। हर बंदे के बारे में हमारे दिल में एक गुमान ज़रूर होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ नहीं। और बस वह मैंने देखे माओं को उनका एतमाद होता है अपने बच्चों पर, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरी बच्ची ये नहीं कर सकती। अल्लाह ताला यहाँ मोमिनों को दूसरे मोमिनों के लिए यही एतमाद सिखाते हैं कि जैसे डंके की चोट पे तुम, बेशक तुम्हारे बच्चे ने किया भी हो तो तुम कहते हैं नहीं वो नहीं कर सकता, नहीं वो मेरी बेटी तो ये कर ही नहीं सकती, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको पेट में रखा है, मैंने उसको दूध पिलाया, तो अल्लाह कहते हैं कि एक आयशा ही ऐसी थी जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्ट किया। पहली मानी है। दूसरा, या बियन फुसिहिम खैरन का मानी है कि खुद को आयशा की जगह पर रख लो। क्या आयशा इतनी थुड़ी हुई थी, चंद घंटे के लिए वो काफ़िले से जुदा हुई और उन्होंने इतना गंदा काम कर लिया, क्यों उनको अपने शौहर की मोहब्बत नहीं मिली हुई थी। और दूसरी बात, अब यहाँ से देखिए, मोमिनों की सोसाइटी और फाजरों की सोसाइटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्या ईमान वाले साफ सोच वाले लोग हर वक्त ऐसी ही गंदी बातें सोचते हैं? क्या जहाँ किसी गैर मर्द को औरत का बात करने का या कहीं अकेले का मौका मिला, क्या वो ये गंदी बातें सोचेंगे? क्या मोमिनों की सोच इतनी गंदी, उनकी निगाहें इतनी गंदी हैं? हरगिज नहीं। और क्या बंदा हर वक्त हर तरह के हालात में इन चीज़ों के लिए तैयार होता है? ये चीज़ें बग़ैर किसी प्रेपरेशन के इंसान कबूल करता है? सोचो कि तुम कह क्या रहे हो, वहाँ कोई क्लब नहीं था, वहाँ न्यू ईयर की नाइट नहीं थी, वहाँ कोई गंदे काम नहीं हो रहे थे कि एकदम जज्बात की रो में बह गए। और आप सारे वो लवाजमत भी देखे, सफ़र, गर्मी, थकन, पसीना, बू, परेशानी, घबराहट, कोई तो ऐसा मोटिव ही नहीं है कि जो ऐसे गुनाहों को प्रमोट करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करती हैं, लिबास प्रमोट करते हैं, खुशबुएँ होती हैं, माहौल होता है। वो बेचारे तो सफ़र में थे और आ कहाँ से रहे थे, ये भी सोचो, जंग से आ रहे थे, कोई फ़न करके नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा तुमने ऐसी बात सोची भी क्यों। वक़ालु हाज़ैफ को मुबीन, और तुम्हें ये कहना चाहिए था कि कह देते कि ये तो खुला एक इफ्क है, तूफ़ान है। तो आप भी अपने पल्ले से ये बात बांध लें, किसी दीनदार के बारे में कोई बात पता चले, वहीं सफ़ा फाड़ के आगे चले, मुझे क्या था और तुम्हें क्या, मेरा क्या मामला। इसलिए कि जब एक से दूसरा आगे सुनता है ना, तो बात बिगड़ जाती है। चलो ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात कह दी, उसको क्या करना चाहिए था, आयत 13, लौल जाओ अलैहि बियारबाती शुहदाए, शुहदा, क्यों नहीं वो लेकर आए इस पर चार गवाह। पिछली आयतों में हमने क्या पढ़ा, किसी पर कज़फ का इल्ज़ाम लगाया तो 80 कोड़े, इल्ज़ाम से बचने के लिए चार गवाह दिखा दो। भाई तुमने अगर देख लिया उनको आते हुए तो इस काम के चार गवाह पेश कर दो, जैसा कि पीछे बात हो चुकी और सूरत निसा की आयत नंबर 15 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जिना की सज़ा के लिए चार गवाहों की शर्त लाजमी है। और सूरत निसा जो थी वो 4 हिजरी में नाजिल हो चुकी थी, तो गोया के लोगों को ये बात साफ पता थी उस वक़्त भी कि किसी पर अगर इल्ज़ाम लगाएं तो या तो चार गवाह पेश करें या खामोश रहें। और फ़ाइज़लम यातूब बिशुहदाई, जब वो लोग गवाह नहीं ला सके तो फ़ौलाई का इंदुल्लाह हुमुल काज़िबून, तो वही लोग अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं, यानी उनके झूठा होने में यही बात काफ़ी है कि उनके पास चार गवाह नहीं है। कितना प्रोटेक्टेड है इस्लाम का कानून कि ऐसे ही नहीं कि राह जाते किसी को इस तरह के बातों में पकड़ लो। और साथ ही फरमा दिया वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर से मुराद कौन है? वो तीन चार मुखलिस सहाबा जो बातों में आकर आयशा के खिलाफ बात कर गए। व रहमत हुआ, और उसकी रहमत फिर दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत में। लमस्सकुम फी मा अफज तुम फी ही अजाब नजीम, तो फिर तुम पर ज़रूर लगता दुनिया में भी इस मामले में सख्त अजाब जिसको तुमने शुरू किया। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा ख़ास फजल और मेरी रहमत है कि ये बातें नबी के घराने पे बात करना छोटी बात नहीं है। ये मत देखो कि इल्ज़ाम छोटा है कि बड़ा, ये देखो किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, किस हस्ती के बारे में तुम कुफर बोल रहे हो। तो अगर ऐसे शख्स के बारे में तुम कोई बात करते हो तो अल्लाह ताला तो तुम्हें उसकी पकड़ में आखरत का इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि दुनिया में पकड़ लेता। लेकिन उसने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ये अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत है। तो क्या पता चला कि ऐसी बातों में अगर बंदे की पकड़ अगर नहीं हो रही तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के ऊपर रहमत है। तरबियत के पहलुओं को नुमाया किया जा रहा है कि देखो तुम सब अहले ईमान एक जान की तरह हो। हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाकर अपने ख्याल से अपने कियास से तुम उसकी तरदीद क्यों नहीं करते? तुमने क्यों नहीं आयशा की साइड ली? तुमने क्यों उनके खिलाफ बात कर दी? और फिर गवाह पेश करो। और आपको पता है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस बारे में बात की थी तो हज़रत हसन, मिस्ता और हमना, इन तीनों पे हद कज़फ लगी थी फिर बाद में, और अब्दुल्ला बिन उबई को छोड़ दिया। क्यों? वलहु अज़ाबुन नज़ीम, उसकी आखरत में पकड़ोगी। इन तीनों के ऊपर तोहमत इस पे लगी थी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद और इब्ने माजा में भी है, और अब्दुल्ला बिन उबई को छोड़ दिया। मोमिनों को अल्लाह दुनिया में पाक कर देता है। और दूसरी बात ये था कि अब्दुल्ला बिन उबई के पीछे एक पूरा जत्था था। अगर अब्दुल्ला बिन उबई को कुछ कहा जाता तो हो सकता है कि उस वक़्त मुसलमानों के लिए ऐसी दुश्मनी उठ जाती कि उस वक़्त फिर इंसान उस पर काबू ना पा सके। फिर एक और बात इसमें क्या पता चलती है? अफवाह साजी, नशर व इशाअत, ऐसी चीज़ों को आगे करते जाना, ये चीज़ बिल्कुल भी बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए अगली आयतों में देखिएगा कैसे अफवाहें फैलती हैं। आयत नंबर 15, इस तलक़ऊ नहु बी अलसिनातिकुम, जब तुम ले रहे थे इसे अपनी ज़ुबानों से, यानी इधर से बात सुनी उधर पहुँचाई, इधर की उधर उधर की उधर, ये इंसानी कमज़ोरी है। आप देखिए कि इंसान के अंदर एक जज्बा है दूसरे को हैरान करना, सरप्राइज़ देना, परेशान करना। अब जब ये बात होती है ना तो लोग ऐसी बात सुनते ही फटाफट क्या करते हैं? इस तलक़ऊ ना हो बेलसिनातिकुम, टेलीफोन, सेलफोन, सुना कुछ तुमने। आप अपने ऊपर लेके सोचें, कोई ऐसी बात किसी मशहूर शख्स की दुनिया में बाहर आती है, अमूमन उसके बाद क्या होता है? टेलीफोन बिजी, एंगेज। और हर बंदे का दिल होता है कि यह अहम खबर मैं दूसरे को दूँ। भला क्यों दूँ? ताकि मैं उसकी वो हर हैं, अच्छा ऐसा हुआ, क्या कह रही हैं आप, मैं तो नहीं मानती। इस तरह की बातें देकर वो हैरत में लोगों को गुम करना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वतकूलूना बिअफवाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, तुम अपने मुँहों से वो कुछ कह रहे थे जिसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं था, सब बातें बेइल्मी की थी। वतहसबूनहू हैयिना, और तुम इसको बहुत मामूली समझते थे। क्या हुआ, एक आयशा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हालांकि वहु इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक आम मुसलमान औरत पर भी तोहमत लगाना बहुत बड़ी बात है, कहाँ फिर वो अल्लाह के नबी की बीवी, और वो बीवी जिससे अल्लाह के नबी को मोहब्बत बहुत थी। तुमने आयशा पे नहीं तोहमत लगाई, तुमने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दी, और अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने वाला अल्लाह को तकलीफ़ देता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए था? वलौला इस समय तुमू हो, क्यों ना हुआ कि जब तुमने इसको सुना, कुल तुम मा यकून हाजा, तुम फौरन कह देते हमारे लिए तो ये लायक ही नहीं, या हमें तो ये जायज़ ही नहीं कि नतकल्लम बी हाजा, कि हम ऐसी बात जुबान पर लाएं। ये है 100 बातों की एक बात, नजा मन समत, दो तीन लफ्ज़ों की हदीस है। निजात पा गया वो जो चुप रहा, एक चुप 100 सुख। इसीलिए आप देखें जो लोग कम बोलते हैं ना वो बहुत बातों से बच जाते हैं, फितनों से भी बच जाते हैं, इल्ज़ाम तराशियों से भी बचते हैं, और अपने नेकियों को ज़ाया करने से बचते हैं। मैंने बोलना ही नहीं, बुला लो, जो मर्ज़ी कर लो। अल्लाह ताला कहते हैं सुबहान का हाज़ बहतान व नज़ीम, पाक है अल्लाह तू, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यानी हम इस पर नहीं बोलेंगे। और साथ ही देखिए इसमें शिद्दत, यइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, इसमें और तो शिद्दत है। अन तऊदु लिमिस्ली ही अबदा, अब दोबारा ना ऐसा काम करना, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। कितनी तकरार है, देखो अब हो गया, आइंदा ना करना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाज़ह करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ तक ये बात पूरी हुई, आगे इसके सीक्वेंसेस हैं। इस सारी बातों को जमा कर लें, कितना खूबसूरत अदब है कि जब तक किसी बात का यकीन ना हो उसको बोले ना। कभी भी आपके सामने कोई बात आए, सोचें मैं ये बात क्यों बताऊं, अगर सच है तो कोई और बात कर लेगा, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि जिसको मैं ज़रूर पेश करूं। एक और चीज़ अपने लिए हम सब अमल के नुक्ते नोट कर रहे हैं ना, मैं इस बात को आगे करूंगी, अगर ये बात सच हुई तो खुशी होगी दूसरों को। आप फ़ोन करते हैं, हेलो सुनो तुमने देखा वो फलां की बेटी का ये चक्कर है, सच बताइए ये बात सुनकर क्या किसी को खुशी होगी, तो मैं क्यों बताऊं। और अगर ये बात गलत होगी तो इसका गुनाह मेरे सर पे आएगा। ये सूरत तो ऐसे लगता है मैं अंदर बाहर से निखार रही है कि देखो तुम लोगों की बातों में बेतुका ना बोला करो, पता भी नहीं। और बास बातें हम करते ही अपने गुमान के साथ हैं, आई थिंक आई थिंक आई थाट आई थाट आई थिंक सो, यही हमारे जुमले होते हैं। जब तक किसी बात का यकीन ना हो जाए कभी ना बोलें। यकीन करें, अगर आप कभी अहादीस पढ़े ना ज़ुबान के बारे में, ज़ुबान की हिफाजत और उसके जो नुकसानात हैं गलत चीज़ों के, बिलीफ में दिल ही नहीं करता बोलने को, मैं क्यों बोलूं, ये कौन सी अच्छी बात है, अच्छी भी होगी तो कोई दूसरा सुना देगा। इसको सरसरा कहते हैं अरबी में, बतूनी बनना, बतूनी हर वक्त टॉकेटिव, टक 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 टिक 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 लगी है। और जितने आप बेकार होंगे उतनी बैठ के बातें करेंगे। कहीं भी चले जाएं आप, हम कहीं इनवाइटेड थे, हम तो वक्त पे चले गए थे ये सोच कर के सब कुछ वक्त पे होगा, लेकिन हम पहले ही थे वहाँ। फिर उसके बाद जब पूरा टोटल टाइम गुजरा ना, तो मैंने देखा शादी अच्छी थी, यानी इस्लामिक तरीके से थी, कोई वहाँ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की टाइम, मैंने घड़ी देखी ना, तो मैंने कहा तो पूरा उतना टाइम हमने यहाँ गुजारा है जितना हमारी क्लास का टाइम है। 4 घंटे लोगों को कितने मुश्किल लगते हैं, हाय 4 घंटे हैं, तो वो 2 भी नहीं आते, एक भी कोई नहीं आता, जिसको नहीं आना वो 4 का सुन के 1 घंटा भी नहीं आता। लेकिन शादियों में, और मजाल है कि किसी के मुंह पे कोई ख्याल हो कि देर हो रही है, और वो भी रात का वक्त, बैठे हैं तो बैठे हैं बातें और ठट्ठे और हंसी और मजा, और हर बंदा फेस टाइम पे अपनी तस्वीरें बना रहा है। मैं कह सकती हूँ बहुत देर बाद शादी मैंने देखी है, अच्छा माहौल था शादी का, लेकिन हम औरतें तो वही हैं ना, चाहे उन्होंने पर्दे का इंतजाम किया, बिलीव मी कि मैंने शायद 20 लोगों को देखा होगा, उनके हाथ में फ़ोन है और ऐसे करते, मुझे समझ नहीं आया, मैं कहीं मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बंदा जो मेरे सामने ही थी देखा तो उसमें तस्वीर थी, तो मुझे समझ आया कि ये अपनी तस्वीर देख के खुश हो रही है, या खींचते हैं या देख रहे हैं, क्या शान है। कौन देखता है आपको, वो तो अपनों को देखते हैं, वो तो अपने आप को देख रहे हैं, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, तो उनको देख के मैं सोच रही थी कि मैं भी ऐसी हरकतें करूँ तो मैं कितनी सी चोरी लगूँ, लेकिन उनको नहीं पता क्योंकि वो कर रहे हैं। तो याद रखिए कि इंसान अपने आप को फारिग ना छोड़े। ये लोग क्यों रात देर तक जाग रहे हैं कि इन्होंने सुबह देर तक सोना है, तो जिसने सुबह फजर उठ के पढ़नी और उसके बाद अपने मामूलात शुरू कर देने, फिर वो तो इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा असर डालती हैं। फिर इसमें आप एक और चीज़ देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। इस तरह का अंदाज़ कहीं पीछे पड़ा था, एक आयत है पीछे जो इसी से शुरू हुई थी, सूरह नहल की, चले ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे, इन्नल्लाह यामुरुकुम, याद है बेलातली जी, वही आयत थी। तो ये जो बातें होती हैं ना, इसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि जब अल्लाह मुझे किसी चीज़ की नसीहत करता है तो वो मेरे हक़ में कितनी ज़्यादा काम की होगी। अब इसके बाद वाक्या वही है, लेकिन अब उसके बाद क्या कुछ और मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं काफरों के तरफ से, और उनकी सारी चीज़ें उसको हम देखेंगे। कोई बात आपके जहन में, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्यों नहीं कर सकते मना? आप उनके मसलन कोई बात बताएं तो फिर मैं आपको मना करके बताती हूँ।
जैसे हमारी अपनी फैमिलीज में हो जाते हैं फंक्शंस में या दावतों में, जैसे कोई बात शुरू हो जाती है तो अजम्पशंस हो जाते हैं।
देखिए अगर तो आपको ये लगता है ना कि किसी के खिलाफ बात हो रही है तो फौरन के अच्छा मैं भी बुरी हूँ, अच्छा मैं उनसे पूछूंगी, आप कोई ऐसा जुमला बोल दें जिससे वो कॉन्शियस हो जाए कि अब इसके सामने कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो दूसरों को बता देगी, तो मुझे लगता है कि फौरन आपकी इस बात से लोग खो जाएंगे। और दूसरी बात है कि नसीहत का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
अगर इंसान किसी को जानता है तो वो किसी के मुतल्लिक बात करता है, जैसे मुझे ही कोई जानता है वो बात करता है तो उसको नहीं पता चलता कि वो इतने साल 50 साल पहले कैसी थी, बिलीव कैसे कर लेते हैं। जैसे आयशा सदीका की बात है तो लोगों को कैसे यकीन करता है
जी, यही तो बात अल्लाह ने समझाई है ना कि जब किसी की गलत बात मशहूर करो तो देखो ये कर सकते हैं जी, तो शैतान असल में आ जाता है ना, वो फिर बुला देता है, वो कहता नहीं पहले अच्छी थी अब खराब हो गई होंगी, कुरान जो पढ़ने लग गई हैं।
ऐसी कई बातें हैं, लोग होते नहीं हैं, बात बना लेते हैं।
और यकीन करें इन सब बातों का इलाज है कि लोगों को बिजी कर दें, सिर्फ बिजी करें और इस बात का एहसास हो कि उनकी जुबान से बोला हुआ एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है। जी आप
अगर बोलने से ज्यादा फितना खड़ा हो जाए तो उसमें
नहीं, उसका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि फितना खड़ा ना हो, हक बात से कभी फितना नहीं होता। और उसको जिस तरह भी एक्शन ले आप ले, और अगर उस मौके पे नहीं कर सके तो उसका कोई बाद में ऐसा ज़रूर एक्शन लें, लिख के दें, बात करें कि आइंदा कभी वो बात ना हो। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि बुराई जो है वो ख़त्म हो जाए। इनका सवाल ये था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो क्या ऐसे बच्चे को एबॉर्ट करा देना चाहिए और डॉक्टर जिसकी ज़िम्मेदारी ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसके साथ अल्लाह ताला का मामला उसका अलग है, तो हमेशा इस्लाम का वही मैयर सामने रखें कि निब तयवल इंदा बढ़, ऐसी खराबियों के आने से पहले के हालात पर नज़र रखी जाए। ये अमल एकदम तो नहीं होता ना, ऐसी आज़ादी और बेलाग किस्म की जब हमारे माहौल में आती हैं चीज़ें कि जिसमें पाबंदियां नहीं होती और किसी माँ को पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा इस हद तक बिगड़ चुका है, लिहाजा ऐसी बातों से पहले से अवॉइड करें। लेकिन बहरहाल एबॉर्शन तो नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसी के अंदर से हम गौर व फ़िक्र करेंगे। आयात जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। आयत नंबर 19, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں۔ اس آیت پہ غور کیجئے تو اس آیت میں ایمان والوں کے خلاف ایک سازش ہے جو پکڑی گئی، اور وہ کیا ہے کہ فاحشہ ہو بھی لیکن فی الذین آمنوا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ٹولہ موجود ہے جو بطور خاص ایمان والوں میں برائی فحاشی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور فاحشہ کا لفظ کیا ہے؟ تشیع کا لفظ تو تھوڑا سا بتا دیا تھا، نشر و اشاعت کرنا، کسی چیز کا پھیلانا، شائع کرنا، اشاعت، اردو میں جتنے بھی ہم لفظ بولتے ہیں سب اسی سے۔ الفاحشہ کیا ہے؟ الفاحشہ کا لفظ جب ال کے ساتھ آتا ہے نا تو اس سے مراد زنا ہے، لیکن اگر ال ہٹا دیں پیچھے فاحشہ رہ جائے تو مراد کوئی بھی قول اور فعل جس کا برا ہونا واضح ہو، انسانی فطرت بھی اسے برا سمجھے اور معاشرہ بھی برا سمجھے۔ اسی طرح ایسی باتیں یا ایسا کام جو شہوانی جذبات کو ابھارے، یعنی لسٹ پروکنگ، ایموشن کرنے والا، سینٹیمنٹس کو ابھرنے والا، اور فواحش، فاحشت ان کی جمع۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ لوگوں کا پلان کھول دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں فحاشی عام ہو جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے، بدکاری بھی فاحشہ ہے، اور اسی طرح یہاں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو آپ میڈیا کے ذریعے اور جس کو آپ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے और वो सारे नाम जिनको मोड ऑफ मीडियम्स कह सकते हैं, उन सब से जहाँ खैर पहुँचनी चाहिए वहाँ इस वक्त भर चढ़कर फहाशी फैल रही है। आप देखिए कि जैसे जिस्म में खून फैलता है तो पूरे जिस्म की सेहत होती है ना, किसी भी सोसाइटी का जो मीडिया होता है ना वो उसके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो मैसेज जो आप वन बाय वन किसी तक नहीं पहुंचा सकते, मीडिया के ज़रिए आप एक घंटे के अंदर शहर गली गली कोना कोना वहाँ पहुँचा सकते हैं। अगर वो लोग जो मीडिया, और इसी तरह अब पढ़ने का रिवाज कम होता जा रहा है, लेकिन बाहर कुरान या दीनी किताबें पढ़े ना पढ़ें, अखबार अभी भी पढ़ते हैं, मैगज़ीन, डाइजेस्ट और फिक्शन, इन चीज़ों के ज़रिए जिस तरह माशरों की इस्लाह की जा सकती है उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि आज के दौर में अमूमन, सब नहीं लेकिन अमूमन, वो लोग जो खैर ख्वाह भी हैं, इस्लाह की नीयत भी रखते हैं और जिनके दिल में इंसानियत की और कौमियत की खैर भी है, वो भी उसको जिस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं उससे कुछ और फैले ना फैले फाहिशा फैल रहा है। क्या ये ठीक है? पहले लोग खबरें सुनते थे, अब देखते हैं, बल्कि उसके अंदर भी इतनी मेलोडी और इतनी डाइवर्सिटी है कि उनके कपड़ों के डिज़ाइन तक दिखा के उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। यानी ऐसे लगता है कि हर चीज़ है वो कमर्शलाइज हो गई। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए दिन में 5 बार नमाज दी थी। सूरह कसस में 21वें पारे की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज फुखश और मुनकर से रोकती है। जो बंदा फजर की नमाज और इशा की नमाज जमात से पढ़ने का आदी होगा वो कभी भी फाहिशा का शिकार नहीं होगा। आजमा के देख लें। आज से अगर आप अपने घर वालों के साथ ये बैठ के नियत कर लें कि हम सब फजर की नमाज के ऊपर मस्जिद में होंगे या घर में जो भी औरतें जमात करेंगी, तो ला मुहाला आपको ईशा की नमाज के बाद सोना पड़ेगा। और जितने भी फवाहिश हैं अमूमन ये ईशा के बाद होते हैं। लेट नाइट प्रोग्राम, पार्टीज़, कंसर्ट्स, दावतें, दिस एंड दैट। आज हम सुबह जल्दी क्यों नहीं जाग सकते? ईशा की नमाज जमात से अदा कर कर बिस्तर पे जाना ये मसनून अमल है। जब हम रातों को देर से जागते हैं तो हम देर से उठते हैं, और आप देखेंगे कि फाहिशा के अंदर फिर गंदी बातें, बेकार बातें, मशगले और एंटरटेनमेंट, और फिर इसमें वो हर चीज़ आती है जिसको हम टाइम वेस्टर्स के तौर पे कह सकते हैं या जिनको सिर्फ टू किल द टाइम होता है, गप्पे मारना। अभी तो बैठे, अभी तो बड़ी देर है, नहीं भाई ईशा हो रही है जा रहे हैं, नहीं नहीं अभी तो वक्त चुरा, अभी तो 8 भी नहीं बजे आप जाने की सोच रहे। ये हालात कब होते हैं? जब हमें गपशप की आदत होती है। जिसने फजर पे उठना है वो रात को देर से नहीं जाग सकते। फिर दूसरी बात आप देखिए कि हम सब अपने अपने घरों को देखें। अब ये तो एक बिग प्लान है ना पूरी दुनिया का। आप अपने मेरे छोटे से घर को देखें कि मेरे घर में किस किस तरीके से फाहिशा फैल रही है, क्या तरीका है। अगर आप देखिए कि बच्चों को स्कूल की तालीम से देख लें तो को एजुकेशन में बच्चों का जाना, जबकि वहाँ हदूद की पाबंदी नहीं है, फिर वहाँ का माहौल है, फिर उसके बाद औरतों मर्दों का मिलना, लड़के लड़की का मिलना, बच्चियों का अकेले सफ़र करना, फिर इसी तरह आप देखिए आजकल के टेलीफोन और मीडिया और नेट ने और चिट चैट ने तो हर काम को पीछे छोड़ दिया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि 5 साल बाद ईमेलें नहीं होंगी, क्योंकि अब हर वक्त जब हाथों में गैजेट हैं और स्पॉन्टेनियसली मैसेज होता है, ईमेल की तो ज़रूरत शायद कभी किसी को पड़ती हो, तस्वीरें तक तो आप फ़ोन पे एक दूसरे को और डॉक्यूमेंट्स तक तो उस पर भेज लेते हैं, और हकीकत है कि ईमेल नहीं रहनी तो कंप्यूटर भी नहीं रहने, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। 5-10 साल की बातें, ये अब हर वक्त एक छोटी छोटी चिप हमारे हाथों में होगी, पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हैं, ईस्ट से वेस्ट तक आप जहाँ घूमें आप इन चीज़ों पर रहें। चीज़ें तो ये बड़ी काम की हैं, लेकिन चूँकि पीछे सोच अच्छी नहीं है तो उसके साथ नुकसान है। फिर आप देखिए कि लिटरेचर कौन सा आता है घर में। हम सब अगर आज जाकर, चले इस वीकेंड को भी साथ मिला लें, अपने घर को ए टू जी दोबारा क्लीन करें। मेरे घर में कोई ऐसा फिक्शन है, नॉवल, डाइजेस्ट, फिर आप देखिए कि उसमें कई कुछ किस्म की स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसमें अमूमन, आप देखिए, नाम नहीं लेने को दिल चाहता लेकिन हमारे मुल्कों के मारूफ अखबार हैं जिनको लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं, जो वीकली, उसके बड़े पेज पर तस्वीर किसकी होती है शुरू में, और वो कैसी होती है? क्या हम सब जितनी भी इधर बैठी हैं हम में से कोई एक भी उस जैसी है? और हर घर के मर्द की नज़र उस मॉडल पर पड़ती है, अब वो एक मॉडल जब देखता है एक अखबार पे, क्या उस एक मासूम 16, 17, 18 साल की उम्र के लड़के के जहन में एक आइडियल नहीं बन जाता? टीवी खोलते हैं तो ड्रामों में किस किस्म के मॉडल्स दिखते हैं, फिल्मों में कौन सी हीरोइनें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट जो चलते हैं वो जो औरतें मच्छर और मक्खियाँ मारती हुई दिखती हैं वो कैसी होती हैं? हमारे जैसी होती हैं वो, तो मक्खी और मच्छर मारती हुई इतनी खूबसूरत लगे और उनके चेहरों पे स्माइल है। अगर आप देखें कि कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है कि जो औरत के बगैर बिके, कोई एडवर्टाइजमेंट आप ढूंढ के बताएं, इवन औरत से रेलिवेंट नहीं है ना तो औरत ने पकड़ी ज़रूर है कि मर्द को कि तुम लेके ये सेफ्टी से रेजर कर लो, इससे बाल काट लो, हर चीज़ में औरत। बड़े बड़े बिल बोर्ड देख लीजिए आपको, मुझे कहाँ ये मैसेजेस नहीं मिल रहे। बड़े बड़े इश्तहारों को देखें, इन मुल्कों में तो थोड़ी पाबंदी है तो इश्तहार छोटे लगते हैं, आप कभी अपने मुल्कों के तो देखिए, ऊपर से नज़र शुरू होती है, यूँ नीचे आए तो वो औरत की सिर्फ आधा जिस्म पूरा होता है। बिलीव मी, आप 8 मंजिला अगर बिल्डिंग बड़ी देखें, 10 बिल्डिंगों के नाम मैं आपको भी बता दूँ। मैं कहती हूँ इतनी बड़ी बनाता कौन है और इसकी इजाज़त कैसे है? दुकान तो ये नीचे अंदर एक है, ये बाकी वो कहते हैं पूरी बिल्डिंग से वो खरीद लेते हैं पैसे दे के, अपना बड़ा बोर्ड लगाते हैं, और कुछ की तो पूरी पूरी बिल्डिंगें भी अपनी है। इतने से कद की औरत आप देखें ना, 5-6 फुट का औरत है, और उस तस्वीर में आपको शायद, मेरा ख्याल है 50-60 फुट से भी लंबी होगी, क्या उस पर नज़र नहीं पड़ती? और जो मर्द इन चीज़ों को देखते हैं, क्या वो अपनी बीवियों और बहनों से फिर उनको रिलेट नहीं करते? फिर जो अपने घरों के माहौल हैं, जो कुछ हैं, और जो फिल्मों में मैसेजेस हैं वो क्या? हीरोइन किसको कहते हैं जिसको एक लव स्टोरी मिल गई? विलन कौन होता है अमूमन फिल्मों में? या माँ या बाप, या लड़के के माँ या लड़के का बाप? और सारे नाजरीन की हमदर्दियाँ किन के साथ होती हैं कि अल्लाह करे ये लड़की घर से भाग जाए और बाप की आँख ना ही खुले तो अच्छा, लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि ये पकड़ी ना जाए। हर तरफ आप देखेंगे इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू, वहाँ फिल्मों में बोल्ड करके दिखाते हैं, बापों के सामने बच्चियाँ बोलती हैं, क्या उसका असर आम जिंदगी में नहीं आता? और हर लड़की फिर अपने आप को हीरोइन से कम तो नहीं समझती? हीरोइन कौन है? अगर आप आम लफ्ज़ों में देखें, हर फिल्म के भी अंदर एक लव स्टोरी होती है और दो किरदार, एक हीरो एक हीरोइन, वो कौन है? फाहिशें फैलाने वाले हैं। और जो हरकतें और जो कभी गंदे काम वो फिल्मों में दिखाते हैं, क्या वो मोमिनों के घरों में होने चाहिए? चले आगे, तो एक ढका छुपा दौर था, मुझे तो आज का कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि जी ये चीज़ बच्चे नहीं देख सकते। कौन देख सकते हैं? अम्मी अबू देख सकते हैं। क्या अम्मी अबू देख सकते हैं? क्या हस्बैंड वाइफ अकेले में भी कोई ऐसी चीज़ देख सकते हैं जो बच्चों के सामने नहीं देख सकते? और बच्चों से आप 10 दफ़ा छुपाएंगे ना, वो फिर भी ढूंढ के वो अखबार निकाल ही लेंगे कि ये कौन सा रिसाला है जो सिर्फ अम्मी देख सकती हैं, और ये कौन सी फिल्म है जो सिर्फ अब्बू अम्मी देखते हैं और रात को देखते हैं। याद रखिए ये जहर कातिल है। माँ बाप का अपना ताल्लुक, चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बच्चों के अंदर जाता है। जो चीज़ आप अपने बाप भाई बेटे के साथ नहीं देख सकती, वो आप अपने शौहर के साथ भी नहीं देख सकते, और वो चीज़ बीवी अपने शौहर के साथ नहीं देख सकती। कौन बनाए ये फिल्में और कौन ये गंदगी फैलाए अगर हम लोग देखने वाले ना हो? और आप किसी ऐसी जगह जहाँ ये चीज़ें बिकती हैं या किराए पे होती हैं, वहाँ से तो गुजर नहीं सकते। वहाँ इतनी गंदगी, इतने गंदे पोस्टर्स, इतनी गंदी तस्वीरें, वजह क्या कि आम करो। यहाँ तो मैंने इतना कभी गौर नहीं किया, लेकिन कहीं और की बात है, हर वीक या 2 वीक के बाद जो स्टॉप होते हैं, जो बस स्टेशन हैं, बस स्टॉप हैं, या ट्रेन स्टेशन तो कम है, बिल्कुल हमारे स्कूल के सामने बस स्टॉप है। अब वो इस तरह से होता है कि एक छज्जा सा बनाया हुआ है गर्मी सर्दी से बचने के लिए, हर बंदे ने वहाँ जाना है अपनी जरूरत। इवन छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे भी अकेले बसों में सफ़र करते हैं, उसने वहाँ बस के इंतज़ार में खड़े होना है। इधर भी एक नंगी तस्वीर है तो इधर भी एक तस्वीर है, और हिडन मैसेजेस। और वहाँ खड़ा एक लड़का, आप खुद सोचिए, अपने ऊपर ना लें, आप सोचिए एक बिल्कुल ऐसा लड़का है जिसकी एज ही ऐसी है कि अब उसको सस्पेंस शुरू हो गया कि औरतें कैसी होती हैं, और जो 10 मिनट पहले आके बस स्टेशन पर खड़ा हो गया, क्या वो उस तस्वीर को नहीं देखेगा? उसकी माँ तो ऐसी नहीं है ना, उसकी बहन तो ऐसी नहीं है ना, नज़रों से हया ख़त्म हो गई। और कई दफ़ा भाई बहन खड़े होते हैं वहाँ, कई दफ़ा माएँ बच्चों को छोड़ने आती हैं तो वहाँ खड़ी होती हैं। क्या ये ख़राब चीज़ें, जानवर भी ऐसी चीज़ें आम करते? आपको तो कि जानवरों में भी सेक्स है, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते कि कोई ऐसा गंदा काम करे और सारे बैठ के उसको देखे। कभी तो तन्हाई में देखते हैं, कभी लोग मिल के देखते हैं, कपल्स बैठ के देखते हैं। आंखें नहीं थक जाती? इंसान की आंखें नहीं जल जाती? याद रखिए कि जिस आंख ने ऐसी कोई चीज़ देखी है या जिस कान ने सुनी है, उसका असर ज़रूर उसकी इबादत में कमी में आएगा और उसके अमल में ज़िंदगी में ख़राब होगा। आज मर्दों की नज़रें क्यों बीवियों से खुश नहीं है? وہ کیوں غلط چیزوں کے تقاضے کرتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہتے کیا کریں بچوں کی؟ دیکھیں آپ بتائیں کہ ہم دین کو پھیلانے کی کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم جتنا مرضی رول ہیں وہ یہ کر, یہ مفت تو نہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی, یہ اشتہار مفت تو نہیں لگتے. بعض وقت مفت میں ایسی چیزیں وہ بانٹتے ہیں. آپ اپنے کام کرنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو اتنے گندے ایڈ وہ بھیج دیتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ پیسہ لگتا ہے, سکلز لگتی ہیں, وقت لگتا ہے. ایمان والے سو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی باتیں بہت کر لی ہیں, ان کا اپنا بہت اب گھر اچھا بن گیا, اب ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, اب ان کے میاں کی جاب لگ گئی ہے, ان کے بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں, دس اینڈ دیٹ, اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں. یہ آج ہم سوئی ہوئی امت نے اس فحاشی کو پھیلایا. کوئی کتنا بھی آپ کا گھر گندا کرے, اگر روز صاف کریں گے تو گھر صاف ہو جاتا ہے. جب دنیا میں لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں تو میں اور آپ اس کو صاف کرنے میں کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا. آپ دیکھیے اتنی پیاری کتاب اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے. مجھے دوسروں کی تو بات کرنی بھی نہیں چاہیے, جو بیچارے یہاں نہیں آتے, جن کے پاس ابھی اس طرح کی کتاب نہیں کھلی, ان کو تو ہم پیچھے کر دیں. ان کے اندر تو وہ جوش آنا بھی نہیں ہے, وہ تو بس اللہ ان کی قبول کرے, عبادت اور ان کے فرائض ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لے تو بڑی بات ہے. میں اور آپ اپنے اندر کون سا جوش دیکھتے ہیں؟ کس ہاتھ سے ہم دنیا سے گندگی ختم کر رہے ہیں اور کس ہاتھ سے اس دین کے پیغام کو عام کر رہے ہیں؟ ملین اینڈ ملین ڈالرز لگتا ہے صرف غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے. یہ گندی چیزیں, تصویریں, یا آپ کہہ لیں کہ باطل ادیان کی جو ترویج ہے نا, اس کے لیے وہ لاکھوں لگاتے ہیں. ہم کتنا لگاتے ہیں؟ ایک یا دو, اور وہ بھی تب جب ہمارے پاس کوئی فالتو چینج ہو. کبھی بھی چینج نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے دور میں یہ گندگی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ وہ جاگ رہے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ بناتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم پروموٹ کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی لیول پر تو ان کو جگہ دے رہے ہیں نا. ہم کیوں ایسی دکانوں سے شاپنگ کریں کہ جو سلیو لیس کپڑے بیچتے ہیں, چاہے وہاں سے اچھی چیز کیوں نہ ملتی ہو, ہم کیوں خریدے کہ انہوں نے اس سے غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے؟ وہ عورتوں کو ننگا کر کے ماڈل بنا بنا کے, ان کے اسٹیچوز بنا بنا کے تصویریں آپ جا کے دکھاتے ہیں, تو کیا ہم اس کے اندر کسی جگہ حصے دار نہیں ہیں؟ ایسی موویز, ایسی چیزیں ہم عام کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ جو لفظ ہے نا تشیع, شین یا عین سے, انگلش میں آپ کہہ لیں ٹو پروموٹ, شاید آسان لگے گا آپ کو. ہم کدھر کدھر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ چیزیں جو جذبات کو بھڑکائیں, جس سے گمان آ جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا, اس میں آخر خرابی کیا ہے اور اتنی سخت سزائیں کیوں؟ اس لیے کہ فاحشہ جو ہے نا یہ زنا کا دروازہ ہے. جب تک برائی چھپی رہتی ہے نا ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی. کوئی بھی اچھی چیز پڑی ہو نا اور اوپر کورڈ ہو تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اگر یہاں لا کے اوپر سے اس کا کپڑا اٹھا دیں تو ہم سب کے منہ میں پانی آئے گا کہ ہم اس کو کھائیں. آج گندگی کو ڈیکور کر کے, خوبصورت کر کے, سجا کے یوں پیش کر دیا کہ چاہو یا نہ چاہو تمہاری نظریں اٹھتی ہیں. کتنا بھی کوئی نیک مرد کیوں نہ ہو, کیا باہر جا کر وہ آنکھیں تو نہیں بند کرے گا نا؟ ایک نظر پڑے گی وہ چھپا لے گا, نظریں جھکا لے گا, دوبارہ نہیں دیکھے گا. پڑتی تو ہیں نا نظریں, لیکن اس کے لیے عملی طور پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال. آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے اندر کیا فیل کرتی ہیں؟ آج تھوڑا سا اپنے دل کی بات تو بتائیں. یہ 17 پارے, اب 18 پارہ بھی آدھا ہو رہا ہے. آپ کے اندر کوئی ہلچل مچی ہے کہ نہیں مچی, کہ بس ایسے بیٹھ کے یہاں پڑھنا ہے اور پڑھ کے چلے جانا ہے اور کورس ختم تو گھر بیٹھ جانا ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب زندگی میں کچھ کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ بات یہ کریں کہ میرے اندر کیا گرج ہے, میں اس کے اندر اپنی زندگی میں کیا میں کر سکتی ہوں. جی آپ
ایک گروپ ہے جس میں ینگ لڑکے وہ دعویٰ بھیجتے ہیں, تو انہیں ایک کارڈ جس میں کاسٹ چھپاتے تھے وہ ویسٹرن کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کاسٹ میں یہ لکھا ہے کہ اسٹاپ آئیڈلائزنگ بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز. تو وہ جس میں ینگ مردوں کے پاس جاتے ہیں, جو عورتوں جس میں ینگ لڑکیاں جس میں دوست بن کے نہیں چاہتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ او برادر گیو دس ٹو یور وائف, وائف نہیں ہوتی. تو اس طرح کر کے اسے بھی نہیں بتا دیا کہ اگر منہ سے جس میں ہاتھ سے رکھو یا منہ سے رکھو یا دل سے نفرت کرو. تو
جی دیکھیے کہ جب تک عملی قدم نہیں اٹھتے, جو میری اپنی سمجھ میں تھوڑی سی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایک ہلچل نہیں مچتی نا, آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. کسی نے آپ کو کوئی چیز دے بھی دی نا تو وہ چیز ادھر سے جا کے ادھر پڑی رہے گی, ادھر سے چیز ادھر پڑی رہے گی. हम उसको उस तरह से आम नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमारे अपने अंदर दुख नहीं है। आप में से कितने लोग खुद को सफाई पसंद कहते हैं? मेरा लिए आप सभी दावा करेंगे मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। क्या हम अपने घर के अंदर गंद पसंद करते हैं? गली में, दरवाजे के आगे, कोई हमारे गली के बाहर कोई कचरा फेंक जाए, कोई दो दिन कम्यून वाले सफाई ना करने आए, तो इतना ग्रज और इतनी नफरत हमें इस बुराई से है कि नहीं? हम सिर्फ सब्र किए हुए हैं। हम ऐसे मॉल्स जहाँ पे ऐसी गंदे मॉडल्स और तस्वीरें हों वहाँ से शॉपिंग क्यों करें? हमारा अपना अमल कितना है? और आप देखिए कि लोग तो अपना काम करते रहेंगे, पहले सरजे पे मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि अपनी ज़ात से इन चीज़ों को दूर करके कि मुझे ऐसी कोई चीज़ लेनी नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा, चल ले लेते हैं, फिर इधर कपड़ा लगवा देंगे, इधर किरा देंगे। मिसाल है कि स्लीवलेस कपड़े, यकीन करें मैं हैरान होती हूँ कि अब जो दुल्हनों की शादियों के जोड़े देखती हूँ मैं, एक आध जगह मुझे नज़र पड़ी, मैं हैरान हो जाती हूँ कि कभी ये फिल्मों में नाचने वालियों ने पहने होते थे, पीछे से भी नंगे, आगे से भी नंगे। कोई है बड़ा जो उसके अंदर कपड़ा स्किन कलर का लगवा ले, दूर से लगता है कुछ नहीं, पास हो तो लगता है कपड़ा लगा हुआ है। हमारी दुल्हनें जिनको सब देखते हैं, बाजू भी नहीं पूरे, आगा भी कुछ नहीं, पीछे भी नहीं, अब ये हमारे घरों में आ गए। वो ड्रेस जो किसी दौर में गंदे ड्रेस कहते थे, जिनको नाचने वालियों के कपड़े थे, वो दुल्हन का ड्रेस है जिसको हर बंदे ने देखना है, बूढ़े ने चाहे बेटी कह के प्यार देने के बहाने आना देखना उसने भी है, और भाई बन के और कहीं कज़न बन के देखना सबने वो जो कपड़े आज पहनती है। मैं सोचती हूँ कि लोग खुशियों के लिए जाते हैं, मैं ऐसी जगह जाऊँ तो मैं तो दुख लेके आती हूँ कि हो क्या क्या हमको। औरतों में औरतें जिस कपड़ों में चल फिर रही होती है, मुझे यकीन नहीं आता। मर्दों के अंदर से गुजर के आना है तो यकीन नहीं आता। तो मैं ये सोच रही होती हूँ ऐसे वक्तों पे कि आखिर इनके अंदर ये जज्बे क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे? इसलिए कि असल पानी नहीं है ना, ये इल्म का पानी, ये वो दौलत है जिसके साथ अल्लाह ने आपको और मुझे जोड़ा। और अगर मैं और आप फिर मजबूरियों की नज़र हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। यानी अगर आप इस क्लास के 4 घंटे और अगर इसके लिए कोई हफ्ते में एक दफ़ा टेस्ट देने के लिए कुछ पढ़ते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी अभी इसी तक महदूद है, तो मैं आपको सच कह दूं कि आपके दिल में जज्बे नहीं है। जिनके अंदर जज्बे उठते हैं वो तो सो नहीं पाते, ये एकदम तो नहीं ओवरनाइट चेंज आ जाती कि बस आज आपका ये काम पूरा हुआ, अब आप दूसरे काम पर आ गए। हवाएँ तो बारिश से पहले ही चलनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये 18 पारे पढ़ने तक आपके अंदर कोई अमली कोशिशें नहीं, दिमाग चलते हैं ये करें, ये प्लानिंग ये करें, वेलफेयर है, सोशल वर्क है, लोगों में दीन की बात करना है, उनको सीडीज देना है, क्या कुछ हमारे पास चांसेस मौजूद हैं? हम वो छोड़ के हम खुद अपने इस शौक में ही पक्के हो के वक्त पे आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। तो अपने अंदर हरकत पैदा करें। याद रखें कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे ज़िंदा कर दोबारा। जब तक हम खुद नहीं तड़पेंगे, और जब एक ईमान वाला तड़पता है तो अल्लाह उससे ज़रूर कुछ कराता है। अगर आज मुझसे अल्लाह कुछ नहीं करा रहा ना, तो इसके अंदर कि मैं तड़प ही नहीं हूँ, मैंने तलब ही नहीं की, मेरे अंदर वो ख्वाहिश ही नहीं है। इस तरह से मुझे महसूस होता है कि वो तो इतनी गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई फैलाने के लिए कितने मजबूर हैं। आपके जिम्मे कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर कर सके कि अमली तौर पर मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे वाकई की बुराई ख़त्म हो गई? कोई किसी का एक्सपीरियंस, कोई ऐसी बात, उनको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें इतना बुरा असर रखती हैं? और इसने हमारी यूथ को ख़राब किया हुआ है, उनकी सोच ख़राब है, इसी से हमारी बेटियों की सोचें बदली हुई हैं। जी आप बोलें कुछ।
मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने मुर्दियत ले तो मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं कितना डिसेंसिटाइज हो गई थी इन चीज़ों से, कि बुरा बुरा ही नहीं लगता था। मेरी एक दोस्त है तो बहुत इमोशनल है, तो मैंने सोचा तुम गाने सुनती हो, तो मैं कहा हाँ, मैंने कहा तुम कुछ दिनों के लिए गाने रोक लो, तो तुम देखना कि तुम्हारे में कितना चेंज आएगा, कि तुम्हारे इन गानों की वजह से तुम्हारे इमोशन बदलते हैं।
गाना जो है वो जिस्म के ऊपर इस तरह असर करता है जैसे सब्ज़ा उगता है बारिश के पानी से। दिल के अंदर गंदे ख्याल आते हैं, और हमारी नस्ल किस तरह, आप देखिए कि म्यूज़िक की रस्सी है, अगर आप उनको कुरान से जोड़ते हैं या उनको थोड़ी सी इस चीज़ टेस्ट को चेंज करते हैं तो बहुत सारे जज्बात बदल सकते हैं। आज भी जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं ना, उनके अंदर जोश और जज्बे आते हैं, लेकिन हम चूँकि कर चुके हैं तो बस हम सोचते हैं कि हम तो बस बहुत नेक हैं। तो कम से कम हम खामोश तरीके से ऐसे मैसेजेस देकर और अपनी ज़ात से क्योंकि ये जो अब सिस्टम्स हमारे पास बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ज़रिए तो हम इतना हम कर सकते हैं। अब जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है, हम अभी जब मैं पाकिस्तान में एक दिन के लिए थी वहाँ, तो उधर मैंने उनसे एक दर्स रखा, बल्कि आप सुनना चाहें तो सुने, उसमें पूरा प्लानर दिया था कि किस तरह एक साल का गोल लेकर हम अपने घरों की मेड्स, ड्राइवर, खुद मर्दों, शौहरों को कुरान के तर्जमे से गुजारें। उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की। उसी क्लास में हमने बैठ के बात की कि चले अगर आप चाहें तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, और ख़ुलासा कुरान मेरा लिए सबसे शॉर्ट तफसीर है, 20 मिनट में एक रुप होता है, तो हर दिन एक रुप का आपको लिंक देंगे और आप सुनेंगे। बस आपका काम यह कि आपने दिन के 24 घंटों में किसी भी वक्त उसको सुनना है और ओके कर दें कि हमने सुना है, अगले दिन दूसरा लिंक है। इतने लोगों ने वो आइडिया पसंद किया, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के पूरा ग्रुप बन गया, छोटी सी एफर्ट है। अब आप देखिए कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में 20 मिनट का एक लिंक रोज़ भेज के सुन रहे हैं, कितने लोगों तक कुरान पहुँच सकता है। और बड़े बड़े गोल जब लोग नहीं ले सकते तो छोटे छोटे गोल लेने पसंद कर जाते हैं। ये दुआ किया करें कि अब हमारी ज़िंदगी इसके बगैर कभी भी जुदा ना हो। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता है तुम नहीं जानते। हर बात की हकीकत अल्लाह को पता है, और जिन लोगों के ये मामले हैं उनके क्या प्लान्स हैं और तुम्हारी कोशिशें कितनी हैं अल्लाह को खूब पता है।